हित्वाहालामभितर्षम्। हित्वाहालामभिमतर्षाम् रेवती लोचनाङ्काम् बन्धुप्रीत्या समरभिमुखो लाङ्गलीयाः शिशेवे कृत्वा ताशामभिगमपां सौम्य सारस्वतीनाम् अन्तःशुद्धस्तमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः। अन्वयः बन्धुप्रीत्या समरभिमुखो लाङ्गली अभिमतर्षां रेवती लोचलाङ्काम् हालाम हित्वा या शिशेवे हे सौम्य त्वम् अपि ताशाम सारस्वतीनाम अपाम अभिगमं कृत्वा अंतःशुद्धो वर्णमात्रेण कृष्णो भविता। व्याख्या बन्धुप्रीत्या बांधव स्नेहेन पांडवकौ रवस्नेहे नेत्यर्थः न तु भये नेति भावः। समरविमुखः युद्धपराङ्मुखः लाङ्गली फलधरः बलराम इत्यर्थः। अभिमतर्षाम् अभीष्टस्वादाम् रेवतीलोचनाङ्काम् स्वप्रियानयनचिह्नाम् हालाम् सुराम् हित्वा त्यक्त्वा दुस्तेजामपीति भावः। याः सारस्वती अपाः शिशेवे सेवितवान् हे सौम्य हे सज्जन त्वं मेघः अपि तासां पूर्वोक्तानां सारस्वतीनां सरस्वतीसम्बन्धिनीनाम् अपां जलानाम् अभिगम सम्मुखगमनं सेवाम् इति भावः कृत्वा विधाय अन्तःशुद्धः निर्मलान्तकरणः सन् वर्णमात्रेण रूपेणैव कृष्णः श्यामः न तु पापेनेति भावः भविता भविष्यसीत्यर्थः। सरलार्थः बान्धवानां कौरवपाण्डवानां स्नेहेन बलदेवो युद्धविमुखो भूत्वा अभीष्टरसां सुरामपि विहाय यस्याः सरस्वतीनद्याः जलं सेवितवान् हे सौम्य त्वमपि तस्या एव सरितो जलम् उपयुज्य शुद्धान्तः करणः सनवर्णमात्रेण कृष्णो भविष्यसि। अनुवादः बांधव कौरव और पांडवों के स्नेह से बलराम जी ने अभीष्ट स्वाद वाली तथा अपनी प्रिय रेवती के नेत्रों के प्रतिबिंब से युक्त सुरा को छोड़कर जिस सरस्वती नदी के जल की सेवा की थी हे सौम्य तुम भी उसी सरस्वती के जल की सेवा करके पवित्र अंतःकरण वाले होकर वर्ण मात्र से श्याम हो जाओगे। टिप्पणी बंधु प्रीत्या बंधूनां प्रीतिस्तया व्याकरणषष्ठी तत्पुरुष। महाभारत का युद्ध में बलराम जी ने बांधव कौरवों और पांडवों की प्रीति से किसी के पक्ष में भी सम्मिलित न होकर तीर्थ यात्रा की थी। समर विमुख विपरीतम मुखम यस्य स विमुख व्याकरण बहुव्रीहि। समरे विमुख व्याकरण सप्तमी तत्पुरुष। लांगली बराबर लांगलम अस्यास्ति लांगल धन इन्हीं लांगल अर्थात हल बलराम का अस्त्र है। इसी से बलराम जी को लांगली व हली भी कहते हैं। ये वसुदेव की रोहिणी नाम की पत्नी से उत्पन्न हुए थे अतः इनको रोहिणेय भी कहते हैं। ये श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे। अभिमतर्षाम अभिमतो रासो यस्याः सा ताम व्यकरण बहुव्रीहि। रेवती लोचनाङ्काम रेवत्या लोचने व्यकरण षष्ठी तत्पुरुष। रेवती लोचने एव अङ्कः व्यकरण प्रतिबिंबित त्वचिह्नम् यस्याः सा ताम व्यकरण बहुव्रीहि। रेवती बलराम जी की पत्नी थी और वे पति के साथ सुरापान करती थी। उस समय रेवती के नेत्रों का प्रतिबिंब परछाही सुरों में पड़ने से उसे रेवती लोचनाङ्काम कहा गया है। हालाम यह पद देश भाषा का होने पर भी कभी प्रयुक्त होने से साधु है ऐसा बामन ने लिखा है। हाला विकर्ण सुरा बलराम को अतिशय प्रिय थी, इसलिए उसे हलिप्रिया भी कहते हैं। सुरा हलिप्रिया हाला इत्यमरह हित्वा हादन एक्त्वा शिशेवे सेवधन लिट सौम्य बराबर सोम इव सोमः। सोम ब्रैकेट में चंद्र के सदृश आह्लादक होने से सोम यह लाक्षणिक प्रयोग है। सोम इव चतुर्वर्णादिभ्य स्वार्थ उपसंख्यानम इस वार्तिक से स्वार्थ ब्रैकेट में प्रत्यर्थ में स्याय प्रत्यय हुआ है। सौम्यम तु सुंदरे सोम दैव्यते इत्यमरः। सरस्वती नाम सरांसि संति यासाम सा सरस धन मतुक धन गीप। सरस्वती सरस्वत्या इमा सारस्वत्यः तासाम सरस्वती धन अण धन गीप यह अपाम का विशेषण है। सरस्वती नदी वेद और पुराणों में महानदी के रूप में मानी गई है। कहा जाता है प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यह मरुभूमि में लुप्त हो गई है। कुरुक्षेत्र में इसका प्राशस्त है जैसा कि कहा गया है गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। अपाम अभिगमम इस किरंत पद के योग में कर्म में षष्ठी हुई है। अभिगमम अभिगमनम अभिगमहतम गृह गृह द्रि निश्चिगमश्च इत्यप अभिधन गम धन अप अंतः शुद्ध बराबर अंतः लेकिन में अंतः करणे शुद्ध शुभ शुभा समासः वर्ण मात्रेण वर्ण एव वर्ण मात्रम तेन मयूरवंश कार्यस्य इति समासः प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम इति तृतीया। कृष्ण बराबर कृष्ण प्रकट में वर्ण अस्या अस्तीति वर्णवाचक कृष्ण शब्द से मतु प्रत्यय हुआ था। उसका गुण वचनेभ्यो मतुको लुगिष्टः इससे मतुक का लुक हो गया। यह वैयाकरणों का मत है। अलंकारिक और नैयायिकों के मत में गुणवाचक कृष्ण आदि शब्द का लक्षणा से गुणवान अर्थ हो जाता है। भविता भविष्यति भू धातु से डुबलतचो इस उत्से त्रिश प्रत्यय हुआ है। वर्तमान सामीपे वर्तमान वद्वा इस सूत्र से वर्तमान काल में प्रत्यय हुआ है। अंतःकरण की शुद्धि प्रदान है केवल बाह्य शुद्धि नहीं। बाह्य शुद्धि से संपन्न होते हुए भी सूत हत्या के प्रायश्चित के लिए सस्ती नदी के जल की सेवा करने वाले भगवान बलभद्र जी इसमें दृष्टांत हैं। इस कारण से तुम्हें भी सरस्वती की सेवा करनी चाहिए यह इसका तात्पर्य है। यहाँ पर तुम्हारी भविता इस पाठ के स्थान में कोई तुमसी भविता ऐसा पाठ पढ़ते हैं उसमें तुम भविता असी ऐसा अन्वय करना चाहिए। भविता त्रिश प्रत्यांत है। असी यहाँ पर वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा इस सूत्र से वर्तमान सामीप्य में भविष्यत में लट हुआ ऐसा मानना चाहिए। तस्माद् गच्छेदनुकनखलम शैल राजा वतीर्णाम जानो कन्या सर्गतनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम गौरी वक्त्रभ्य कुटीरचनाम या विहस्येव फेनये शंभो केश ग्रहण मकरो दिन्दु लग्नोर्व्यस्ता। अन्वय तस्मात् अनुकनखलम शैलराजावतीर्णाम सगरतनय स्वर्ग सोपान पंक्ति जहनोह कन्याम गच्छे है या गौरी वक्त्र भकुट रचनाम फेन ही विहस्य इव इंदु लग्नोर मिहस्ता यकण सती संभो केश ग्रहणम अकरोत। व्याख्या हे मेघ तस्मात् कुरुक्षेत्रात् अनुकनखलम कनखल पर्वत समीपे शैलराजावतीर्णाम हिमालयावरूढ़ाम सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम सगर पुत्राति दिवारोहणिनी श्रेणीम सगर सुत स्वर्ग प्राप्ति साधन भूताम इति भावः। जहनो जहनानुनामकस्य राज्ञः कन्याम कुमारीम जाह्नवीम इत्यर्थः। गच्छे गच्छ या जाह्नवी गौरी वक्त्र भकुटि रचनाम पार्वती मुख भुरु भंग करणम सापंत रोषादिति शेषः फेनैः जुंडीरैः विहस्य इव अवहस्य इव सैकल्या फेनानाम हासत्वेनोत्प्रेक्षा इंद्रलग्नोर्मिहस्ता चंद्रलग्न तरंगकरा विकट में सती संभो शिवस्य केशग्रहणम कुचग्रहणम अकरोत् कृतवती सरलार्थ हे मेघ कुरुक्षेत्रात् कनखल पर्वत समीपे हिमालयादवतीर्णाम सगरपुत्राणाम स्वर्गप्राप्ते साधनभूतां भगीरथीं गच्छ या फेनैः पार्वती भ्रुकुटी रचनामवहष्येव संभोर्जटाजुट मशिस्त्रियत अनुवादः हे मेघ कुरुक्षेत्र से कनखल पर्वत के समीप हिमालय पर्वत से उतरी हुई तथा महाराज सगर के पुत्रों की स्वर्ग यात्रा में सीढ़ी की समान गंगा जी के पास जाओ जिन गंगा जी ने पार्वती के मुख में स्थित भ्रुभंग को मानो फेनों से हंसकर तरंग रूप हाथों के चंद्रमा के ऊपर लगाती हुई शिव जी के केशों को पकड़ लिया। टिप्पणी अनुकनखलम कनखलस्य समीपे अनुर्यत समया इति अव्ययी भावः जहाँ पर गंगा जी पर्वत से उतरकर निम्न स्थान पर बहती हैं हरिद्वार के समीपस्थ उस स्थान को कनखल कहते हैं। स्कंद पुराण में इसकी ऐसी निरुक्ति दी गई है खलह को नात्र मुक्तिम वै भजते तत्र मज्जनात् अतः कनखलम तीर्थम नामना चक्रुर्मुनीश्वराः अर्थात कह कौन सा खलह दुर्जन इसमें स्नान करने से मुक्ति को नहीं प्राप्त करता है अर्थात सब कोई मुक्ति प्राप्त करता है इसलिए मुनियों को कनखल ऐसा नाम रखा यह है। शैल राजा वतीर्णा शैलानाम राजा शैल राजा तस्मात् व्यकरण षष्ठी तत्पुरुष राजा सकृष्टच इति समासांता टच सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्ति सगरस्य तनयः सगर तनयः व्यकरण षष्ठी तत्पुरुष सोपानानाम पंक्ति व्यकरण षष्ठी तत्पुरुष स्वर्गस्य सोपान पंक्ति व्यकरण षष्ठी तत्पुरुष सगर तनयानाम स्वर्ग सोपान पंक्ति ताम व्यकरण षष्ठी तत्पुरुष सगर सूर्यवंश के उत्पन्न एक प्रतापी राजा हो गए हैं। जब ये गर्भ में थे इनकी विमाता ने इनकी माता को गर्भ रेखा में विष दे दिया था। एक मुनि के अनुग्रह से ये सकुशल उत्पन्न हुए तभी से उनका नाम सगर पड़ा। उनकी दो रानियां थी केशिनी और सुमति। मुनि के वर से केशिनी के असमंजस नाम के एक पुत्र और सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब सगर ने सोमायज्ञ आरंभ किया तब इंद्र ने अपने पद के अपहरण की शंका से इनके घोड़ों को चुराकर पाताल में कपिल मुनि के समीप बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र अश्व के अन्वेषण के प्रसंग में पाताल पहुंचे और घोड़ों को देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझकर उनका अपमान किया। तब कपिल मुनि ने दृष्टिपात मात्र से वे सब सगरसुत भस्मीभूत हो गए। उनके उद्धार के लिए सगरवंश प्रसूत अंशुमान आदि कई राजाओं ने गंगा जी को मनुष्य लोक में लाने का प्रयत्न किया पर वे सब निष्फल हुए। अनंतर सगरकुल में उत्पन्न भगीरथ नाम के महाराज ने घोर तपस्या कर गंगा जी को मर्त्यलोक में लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार किया। तभी से भगीरथ ले आने से गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। यह उपाख्यान वाल्मीकि रामायण के बालकांड में है। जानो कन्याम सूर्यवंश के राजा जहनु ने एक यज्ञ किया। गंगा जी ने उनकी यज्ञशाला को जलमय बना डाला। तब राजा ने कुपित होकर अपने तपोबल से गंगा जी को पी लिया। अनंतर देवताओं की प्रार्थना से अपने कर्णरंध्र से गंगा जी को बाहर कर दिया। तभी से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ गया। गच्छे गमधन विधिलिंग धनसिप गौरी वक्त भिकुट रचनाम भ्रूह कुटिहि विकर्ण कौटिल्यम भ्रिकुटिहि विकर्ण षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ पर उत्तर पद के परे रहते इको ह्रस्वोंग्यो गयालवस्य इस सूत्र से भ्रू शब्द के उकार का ह्रस्व भाव प्राप्त था। उसका यंगु वंग भाविमानाम च नेति वाच्यम इस वार्तिक से निषेध का भी अब्रुकुंसादीनाम इति वक्तव्यम इस वार्तिक से निषेध होकर भ्रू शब्द के उकार का वैकल्पिक ह्रस्व हुआ। किसी ने उक्त वार्तिक में अकार का भी विधान किया। अतः तीन रूप होते हैं भ्रुकुटी भ्रुकुटी और ढकुटी। गौरिया वक्त्रम विकर्ण में षष्ठी तत्पुरुष भ्रुकुटे रचना विकर्ण में षष्ठी तत्पुरुष गौरी वक्त्रे भ्रुकुट रचना ताम विकर्ण में सप्तमी तत्पुरुष। पहले पहल जब पृथ्वी गंगा जी के भार को ग्रहण करने में असमर्थ हुई तब शिवजी ने भागीरथ की प्रार्थना से गंगा को अपने जटाजूट में धारण किया। सौत को अपने पति के सिर में बैठी हुई देखकर गौरी ने ईर्ष्या से भवें चढ़ाई इस बात की कवि ने उत्प्रेक्षा की है। विहस्य विधन हस्तन इक्त्वा विकर्ण में लेप इंदु लग्नोर मिहस्ता उर्मय एव हस्ता विकर्ण में रूपक समासः इंदौ लग्नाः विकर्ण में सप्तमी तत्पुरुष इंदु लग्ना उर्मिहस्ता यस्य आसा विकर्ण बहुव्रीहि। जैसे कोई प्रौढ़ नायिका अपने सौत को न सहती हुई अपने ऊपर पति के प्रेम को प्रकट करती हुई सिर के रत्न के साथ पति के केशों में आकर्षण करती है, उसी प्रकार गंगा जी ने भी गौरी की ईर्ष्या से शिव जी के सिर में स्थित चंद्रमा में तरंग रूप हाथों को लगाकर शिव जी का केश ग्रहण कर लिया। यह इसका हम दोनों हिमालय से उत्पन्न हुई हैं, पर हे पार्वती तुम शिव जी के अर्धांग को ही हरण करने वाली हुई पर मैं उनके सिर में रहने वाली हो गई। इस अभिप्राय से गंगा जी शिव जी के केश ग्रहण से कुपित हो पार्वती को फेन के बहाने से जैसे हंस रही हैं। यह श्लोक का तात्पर्य है। शंभो शम सुखम भावतीति शंभु तस्य शम पूर्वक अंतर्भाव वितरण्यर्थम भूधातु से मिद्रवादी नाम उपसंख्यानम इस वार्तिक से डुप प्रत्यय हुआ। केशव ग्रहणम केशानाम ग्रहणम विकट में षष्ठी तत्पुरुष तत् अकरोत् क्रीधन लंग धन तिप ऐसे ही तात्पर्य का श्लोक मुद्रा राक्षस नाटक में भी है। धन्या केयम स्ताते शिरसि शशिकला किमनु नामैत दस्या नामैवास्यास तदे तत्परिचित मपिते विस्मृतम कस्य हेतुः नारीं पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणम यदिन्दे दुर्देव्या निहनोतुमिच्छोरिति सुसरितम साठ्यमव्याद्विघोर्वः। इस श्लोक में विहस्य इव यहाँ पर उत्प्रेक्षा उर्मय एव हस्ता यहाँ पर रूपक होकर संतृष्ट अलंकार हुआ है।